हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नक्श और अभिमन्यु इशिका के कमरे के आगे एक दूसरे से बहस कर रहे थे। अभिमन्यु यही चाहता था कि नक्श यहाँ से चला जाए। उसका इशिका के आसपास कोई काम नहीं था, तो वही नक्श इस जिद पर अड़ा हुआ था कि इशिका की याददाश्त जाने के बाद वो सबको भूल चुकी है। ऐसे में वही इकलौता शख्स था जिस पर वो यकीन भी करती थी और उसे पहचानती भी थी। नक्श का कहना भी सही था। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ कहता, वहाँ पर एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी जो ये दावा कर रहा था कि इशिका नक्श से ज़्यादा क्लोज उससे है और उसे भूल भी नहीं सकती है। उस शख्स की आवाज़ सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने तुरंत पलट कर देखा तो सामने दिशांक खड़ा हुआ था। वहीं दिशांक को देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी। इशिका दिशांक को चाहकर भी नहीं भूल सकती थी। वो उसके साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ था। दिशांक तेज कदमों से चलकर आगे आया और नक्श की तरफ देखकर भौहें चढ़ाकर बोला, आई होप कि अब तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो गई होगी कि उन्हें तुम्हारे अलावा कोई और याद नहीं है। तुमने ये सोच कैसे लिया कि पास्ट में तुमने उनके साथ जो भी किया था उसके बाद मैं तुम्हें उनके आसपास भी भटकने दूंगा? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बदल गया हूँ। मैं बस उसके भले के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, नक्श ने अपनी सफाई में जवाब दिया। अगर बदल ही गए हो तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। उनका भला सोचने के लिए हम लोग मौजूद हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं। रास्ता उस तरफ है। बोलते हुए दिशांक ने नक्श को बाहर का रास्ता दिखाया। नक्श के पास अब वहाँ रुकने का कोई बहाना नहीं था। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, उसका ख्याल रखिएगा, फिर भी मैं यहीं पर हूँ। अगर आपको कभी भी जरूरत महसूस हो तो प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। ट्रस्ट मी चाचू, इस बार मेरे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है। अपनी बात कहकर नक्श वहाँ से चला गया था। उसके जाते ही दिशांक ने अभिमन्यु की तरफ गंभीर अंदाज में देखा और कहा, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई मिस्टर राजवंश। मैंने मैम को पहले ही अवेयर किया था, उन्हें इस तरह किसी इंस्पेक्शन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। उनकी पोजीशन और कंट्रीब्यूशन कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों न हो, उनकी उम्र काफ़ी कम है और इस वजह से लोग उन्हें इमैच्योर समझते हैं। हाँ, इशिका आखिरी बार किसी स्कॉट एंटरप्राइजेस के अंदर गई थी। उसके साथ जो दो ऑफिसर थे उनका भी कुछ पता नहीं चला। इशिका की हेल्थ की वजह से मैं पृथ्वी से बात नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसे सब संभालने को कह दिया है। मेरी मिस्टर चौहान से बात हो गई थी और वो दोनों ऑफिसर अब अपने घर पहुंच चुके हैं, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। मामला काफी टेढ़ा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। फिलहाल हमारे लिए इशिका मैम को संभालना ज्यादा जरूरी है। मिस्टर सिंघानिया ने बताया कि वो उनके पिछले कुछ सालों की यादें भूल चुकी हैं। क्या सच में ऐसा है? दिशांक ने पूछा। इशिका के लिए उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया था। वो बोला, इशिका लगभग 2-2.5 साल पुरानी बातों को भूल चुकी है। तब तक हमारी शादी हो चुकी थी, पर हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, इसलिए मैं उसे याद नहीं हूँ। थैंक गॉड वो मुझे नहीं भूली। डोंट वरी मिस्टर राजवंश, मेरे होते हुए नक्श जैसे लोग उनका फायदा नहीं उठा सकते हैं। अफसोस की बात है कि उस समय नक्श राजवंश इशिका का अच्छा दोस्त था। मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने बताया था कि नक्श उन्हें पसंद करता है और अगर नक्श ने उन्हें प्रपोज किया तो वो उसे हाँ कह देगी। वैसे तो वो हमेशा करियर ओरिएंटेड रही है, लेकिन उन्हें आदर्श सिंघानिया की नाजायज बेटी कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए अपनी पहचान बदलने के लिए सबकी नज़रों में एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखने के चलते हुए नक्श को हाँ कहना चाहती थी। ऊपर से नक्श और उनकी दोस्ती उस वक्त काफी अच्छी भी थी। दिशांक ने अभिमन्यु को सब कुछ बता दिया था। अभिमन्यु तब इशिका की जिंदगी में नहीं था, तब उसे पुरानी बातों के बारे में पता भी नहीं था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, नक्श ने यही कहा था कि वो बदल गया है और इशिका की मदद करने के लिए आया है। मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वो मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा और मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी यादें वापस लौटाने में और नक्श को उनसे दूर रखने में मैं आपकी मदद करूंगा, दिशांक ने अभिमन्यु को आश्वासन दिया। दिशांक के आ जाने के बाद अभिमन्यु को काफी राहत महसूस हुई। इशिका फिलहाल आराम कर रही थी, इस वजह से दिशांक उससे मिलने नहीं गया था, पर वो अब अभिमन्यु के साथ था। ऐसे में अगर नक्श गलत इरादे के चलते वहां आया भी था तो वो इशिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ आशिका के बुलाने पर अभिमान रात के लगभग 11 बजे के करीब उसके घर जा रहा था। जैसे ही अभिमान ने पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करके और गार्ड के पास एंट्री रजिस्टर करके अंदर जाने लगा, लिफ्ट के पास पहुंचते ही अचानक अभिमान के पीछे से कोई आया और उसके गले लग गया था। अभिमान बुरी तरह हड़बड़ा गया था। वो जल्दी से दूसरी तरफ पलटा तो उसके सामने सेलिना थी। हे हैंडसम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बिल्कुल सही सोचा था। अगर किस्मत में लिखा होगा तो जरूर मिलेंगे। देखो, हमारी किस्मत भी हमें एक दूसरे से मिलवाना चाहती है, सेलिना हंसते हुए बोली। उसकी आवाज़ से ही जाहिर हो रहा था कि उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। वहीं अचानक सेलिना को उस जगह देखकर अभिमान के चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव उभर आए थे। आशिका ने उसे यही बताया था कि सेलिना उसकी सौतेली बहन है और वो उसके सामने नहीं जाना चाहती है। आशिका सबसे छुपकर पूरी सिक्योरिटी के साथ में यहाँ पर रह रही थी। ऐसे में सेलिना का वहाँ मौजूद होना आशिका की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं था। अभिमान ने तुरंत सेलिना को खुद से दूर किया और सख्त आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम मेरा पीछा करते हुए तो यहाँ नहीं आई? पीछा तो तुम्हारा करना चाहती थी, पर तुम अचानक गायब हो गए। वैसे मैं डेस्टिनी में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे मामले में कर सकती हूँ। तुम यहाँ रहते हो, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सेलिना जबरदस्ती अभिमान के गले पड़ रही थी। अभिमान ने उसके दोनों कंधों को पकड़ रखा था। वो उसे खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। वो चिढ़ते हुए बोला, लिसन, तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी है, तुम अभी होश में नहीं हो। क्या फर्क पड़ता है, कई बार मदहोशी में ज्यादा मजा है, सेलिना ने आई विंक करके कहा और अपने सिर को अभिमान के सीने पर रख दिया था। उसने अपने दोनों हाथों को अभिमान की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया था। अभिमान ने अपना सिर पकड़ लिया। वो मन ही मन बोला, अब समझ आ रहा है ऐश इससे दूर क्यों भाग रही थी। एक तो इसने इतनी ड्रिंक कर रखी है, ऊपर से जबरदस्ती गले पड़ रही है। मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाना होगा। अगर इसे गलती से भी पता चल गया ऐश यहाँ पर रहती है तो वो इससे बचने के लिए यहाँ से चली जाएगी। हद है यार, सारी मुसीबतें मेरी लाइफ में ही क्यों आनी होती है? मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बाकी लोग कम थे क्या जो एक और आ गई? अभिमान थोड़ी ही देर में सेलिना से बुरी तरह इरिटेट हो गया था। उसने जैसे तैसे करके सेलिना को खुद से दूर किया और कहा, अच्छा ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो? मैं तो अभी आज यहीं पर शिफ्ट हुई हूँ, काफी अच्छा अपार्टमेंट है और लग्जरियस भी, कहीं तुम भी यहीं पर तो नहीं रहते? सेलिना एक्साइटेड होकर पूछा। नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहता, अभिमान ने जवाब दिया। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम सच में मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? सेलिना हंसकर पूछा। वो उसके फिर से करीब आने लगी, लेकिन अभिमान जल्दी से पीछे हट गया था।
नहीं, किसी ने मुझे गलत एड्रेस दे दिया था, इसलिए गलती से पहुंच गया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, इस बहाने मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस भी पता चल जाएगा, फिर कभी मिलते हैं। और हाँ, अगली बार इतनी ड्रिंक मत करना, अभिमान बोला और सेलिना को दिखाने के लिए उसके साथ उसके फ्लैट तक पहुंचा। वो बिल्डिंग लगभग 40 फ्लोर की थी। आशिका 35th फ्लोर पर रहती थी और खुशकिस्मती से सेलिना का फ्लैट 2nd फ्लोर पर ही था। उसे उसके घर पर छोड़कर अभिमान ने ऐसा दिखाया जैसे वो वहां से जा रहा हो। उसने पहले ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट ली और फिर वहां पहुंचकर सीधे 35th फ्लोर पर आशिका के पास पहुंच गया था। मुझे ऐश को अवेयर करना होगा, पूरे मुंबई में इस लड़की को रहने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अभिमान खुद से बड़बड़ाकर बोला और उसने आशिका के घर की डोरबेल बजाई। आशिका उसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से अभिमान के लिए दरवाज़ा खोला। आशिका ने अभिमान की तरफ घूरकर देखा और घड़ी की तरफ इशारा करके कहा, किसी ने मुझे कहा था कि वो 1-1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा और पूरे 2.5 घंटे लेट आए हो मिस्टर राजवंश। अगर इसी स्पीड से काम होता रहा तो मैं जिंदगी भर आपके काम करती रह जाऊंगी, कोई और प्रोजेक्ट लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरी कंपनी के लिए काम कर सकती हो, अभिमान ने बेपरवाही से जवाब दिया और अंदर आ गया था। आशिका ने सार्कास्टिकली सिर हिलाया और दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे आई। उसने देखा अभिमान के चेहरे के भाव सीरियस थे। अभिमान ने गहरी सांस लेकर कहा, देखा जाए तो ये सब छुपाने में ही मेरी भलाई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, तुम्हारी स्टेप सिस्टर इसी बिल्डिंग में रहने के लिए आई है और वो 2nd फ्लोर के 7th फ्लैट में रहती है, बाहर निकलो तो केयरफुल निकलना। अभिमान की बात सुनते ही आशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। जैसे अभिमान की जिंदगी में मुसीबतें बिना बुलाए आ जाती थीं, कुछ ऐसा ही हाल आशिका का था। वो जितना भी तृप्ति और सेलिना से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो उसके सामने आ ही जाते थे। और आपको ये क्यों लगता है मिस्टर राजवंश, ये सब जानने के बाद भी मैं यहाँ रहना चाहूँगी? मैंने आपको बताया था कि मैं उनके सामने नहीं जा सकती हूँ। अब वो खुद यहाँ रहने आ गई है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, आशिका जल्दी से बोली। उसका कहना भी सही था। अभिमान के लिए भले ही बात ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन आशिका जानती थी कि अगर वो गलती से भी तृप्ति के सामने आ गई तो वो उसे सीधा स्काई के सामने ले जाकर खड़ा कर देगी। फिर उसकी अजीब शादी और तलाक से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशिका जल्दी से अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। जैसा कि अभिमान को डर था, वही हुआ। मेरी बात सुनो ऐश, मैंने इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया था, मैं बस तुम्हें अवेयर करना चाहता था। तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे लगा था कि तुम बहुत बोल्ड और ब्रेव हो, लेकिन इस तरह मुसीबत से भागना कहाँ की बहादुरी है? अगर उन्हें तुमसे प्रॉब्लम है तो उनका सामना करो, बोलो ना कि तुम्हें उनके साथ में नहीं रहना है, अभिमान आशिका को समझाते हुए बोले जा रहा था। लेकिन फिर भी आशिका उसकी बात को सुनकर भी नहीं सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी सामान पैक करने में लगी हुई थी। अभिमान जल्दी से उसके पास आया और आशिका का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में तेज आवाज में बोला, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। अरे क्या हो जाएगा अगर वो तुम्हारे सामने आ गए? ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस वो खुद के लोन लिए गए पैसे ना चुका पाने की वजह से मुझे बेच देंगे, आशिका ने इरिटेट होकर जवाब दिया और अपना हाथ अभिमान के हाथ से अलग करके उसे खुद से दूर धकेल दिया था। एक पल के लिए वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। आशिका ने गहरी सांस ली और वो सिर पकड़कर बैठ गई थी। अभिमान को अपनी जिंदगी के इस सच के बारे में बताने का उसका कोई इरादा नहीं था, तो वहीं अभिमान पूरी बात सुनने के बाद हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तुम तो इतनी अमीर हो, तुम उन्हें पैसे दे सकती हो, अभिमान ने हड़बड़ा कर कहा। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। अगर मैंने उन्हें पैसे दिए तो उन्हें मेरी सच्चाई का पता चल जाएगा, और वो जिन्हें मुझे बेचना चाहता है वो कोई आम इंसान नहीं है, बहुत खतरनाक आदमी है। मैं उसे पैसे दे भी दूंगी तो भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हें सब समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो और मुझे रोकना बंद करो। तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी को बर्बाद करने के लिए है, लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, आशिका बोली। आशिका सच में मुसीबत में फंसी हुई थी। ऐसे में अभिमान अभी भी उसे रोकता तो वो सच में एक सेल्फिश इंसान बन जाता। अभिमान बिल्कुल शांत हो गया था तो आशिका को लगा कि अब वो उसे नहीं रोकेगा। अपना सामान पैक करके आशिका वहाँ से निकलने को हुई, तभी अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी बचाऊंगा, अभिमान ने गहरी आवाज में कहा। आशिका उसके कहने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। उसे लगा कि फिर अभिमान उसे रोकने की जिद करेगा, लेकिन इस बार अभिमान उसका हाथ पकड़कर उसे खुद अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था।